नमस्कार। हम खान हसनैन अकीब सर से तरक्की पसंद अरबी तहरीक के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने सर से सवाल पूछा था कि तरक्की पसंद अरबी तहरीक जो है उसमें जो बदलाव आता है, जो समाज में जो बदलाव आता है, क्या हर हर तरक्की पसंद तहरीक को हम स्वीकार कर सकते हैं या उसमें जो विचार दिया गया है उसे स्वीकार कर सकते हैं? तो सर ने बताया कि उसका जो तनकीद है वो तनकीद अच्छी तरह से होना चाहिए, तभी हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल ये मन में उठता है कि ये तरक्की पसंद तनकीद के जो प्रिंसिपल्स हैं या तसव्वुरात हैं ये क्या है, और किस तरह से हम ये मान ले कि ये स्वीकार करने योग्य है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, या इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते? हालांकि वो तरक्की पसंद विचार दे रहे, फिर भी ऐसा नहीं कि हर विचार, नया विचार, वो आपको तरक्की की ओर ही ले जाएगा। इसलिए जिस सर ने बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है कि जिस तरह सुनार सोने का जो प्यूरिटी है
जी
वो जिस तरह से देखता है, उसी तरह से हर अदबी का हमको देखना चाहिए कि
जी
ये स्वीकारने लायक है या नहीं। तो मैं एक बार सर फिर आपका स्वागत करता हूँ
जी जी वेलकम।
और ये अपना जो सिलसिला है वो आगे ले जाता हूँ। सर, पहले तो ये बताइए कि तरक्की पसंद अदबी के जो तरसवात है वो क्या है, और किस तरह से ये जो तनकीद पूरी होती है
जी
तरक्की पसंद हो, फिर भी ऐसा नहीं कि जैसे आपने कहा कि वो जो हर नया है वो हर स्वीकार करते हुए आगे चले जाए, ऐसा नहीं है।
जी जी
इसमें कुछ घातक समस्याएं भी पैदा हो सकती है, जैसे आवाम के लिए या अपने आगे आगे की जो नस्ल है उनके लिए। तो तरक्की पसंद तनकीद जो है
जी
उसके बारे में पहले हमको आप बताइए।
देखिए, तनकीद तो जैसे आपने कहा कि अभी एक किसी चीज़ को परखने का अमल है, इसको आप खरा और खोटा दोनों इसको परखने का। फिर खरा और खोटा जब आप परख रहे हैं तो उसका जाहिर सी बात है कि उसके आपके पैमाने मुकर्रर होने चाहिए
सही बात।
कि आप किस बुनियाद पर एक चीज़ को खरा कह रहे हैं और किस बुनियाद पे खोटा। जैसे उसकी मिसाल ये है कि भी क्योंकि वो तो बदलते रहते हैं ना। जैसे आज ये कहते हैं कि एकदम सच बोलने वाला आदमी नहीं चलता जमाने को, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सच्चा आदमी बेवकूफ़ आदमी है, उसने सच बोलना नहीं चाहिए? सच्चाई एक गुनाह है? ऐसा नहीं होता है।
ऐसा नहीं होता।
वो तो हर जमाने में ही अच्छा ही रहेगी वो। तो इसी तरीके से पैमाने जो हैं तनकीद के, तरक्की पसंद अदब ने भी तनकीद के अपने पैमाने मुकर्रर कर रखे थे। उसने अपने पैमाने बनाए कि जब अदब यानी शायरी या अफसाना या नावल या ड्रामा या जो भी है तो वो कैसा होना चाहिए, यही तनकीद है कि कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। तो उसके सामने एक पैमाना उसने बना दिया, वो अदबी तसव्वुरात हैं। तनकीदी तसव्वुरात जो हैं उसके वो ये हैं कि पहले उसने कहा कि अदब इज्तिमाई जिंदगी के लिए, अदब जो है वो सोसाइटी के लिए, सोशल लाइफ का सोसाइटी का तर्जुमान है, रिप्रेजेंटेटिव है। अदब क्या कर रहा है, लिटरेचर क्या कर रहा है, ये उनकी जो वो चाहते हैं। जैसे अभी आप जो सवालात कर रहे हैं, ये आप ये जो तलबा बैठे हुए हैं इनके दहन में जो सवालात आ सकते हैं आप वो सवाल मुझसे कर रहे हैं, यानी ये कि आप उनके बिहाफ पर ये सवाल कर रहे हैं। यही अदब काम करता है कि समाज
सही।
में जो मसाइल होते हैं अदब अपने जरिए से उनको पेश करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदब समाज के लिए, ये नहीं कि अदब जो मैं तख्लीक कर रहा हूं, मतलब जो अदब मैं बना रहा हूं लिख रहा हूं, ये अदब मेरी शोहरत के लिए है या मेरे लिए है, मेरे ज़ाती फायदे के लिए है या मुझे पैसा कमाने के लिए है कि मैं फला साहब के इसमें चार पांच अच्छी कविताएं लिख दूंगा तो वो खुश होकर पैसा दे देंगे, या इस तरह का, ये नहीं है। अदब तो वो है कि जो समाज में जो चल रहा है, जो अच्छा है उसकी तारीफ करे और जो बुरा है उसके निंदा करे, उसकी मजम्मत करे, ये अदब है। तब जाकर कहलाएगा कि अदब जिंदगी का, इज्तमाही जिंदगी का, समाज का, माशरे का आईना है, तर्जुमान है। जिस तरह आईने में इंसान अपने आप को देखता है, ऐसे ही अदब में, शायरी में या अफसाने में पढ़ने वाला जब वो पढ़े तो उसको लगे कि ये मेरी बात है, ये मेरा मसला है, ये मेरे घर का मसला है, ये मेरे समाज का, ये मेरे मोहल्ले का प्रॉब्लम है। यही मेरे यहाँ होता है अदब में। अफसाने में जो किरदार बताया गया है या अफसाने में जो नावल में जो माहौल बांधा गया है, वो मेरे घर का, मेरे बाजू का, मेरे पड़ोस का, मेरे गांव का, मेरे शहर का, मेरे मुल्क का माहौल है, उसको लगना चाहिए। तब जाकर कहलाएगा कि अदब जो है वो जिंदगी का आईना है, उसका तर्जुमान है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये एक थ्योरी थी उसकी अदब के। दूसरा तस्वुर, दूसरा उसूल ये था उनका तरक्की पसंद अदब का, हम देखेंगे कि अदब उसकी इनफरादियत है। अदब जो है वो एक आम, इससे हटकर है,
हटकर
उसकी अपनी एक इनफरादियत, मतलब इंडिविजुअलिटी, एक उसका अलग अलगपन है, उसका
अलगपन है, सही बात।
तो अदब को जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज अलग होती है तो उसको अपना वो जो अलगपन होता है, उसकी स्पेशलिटी हम कहेंगे उसको, तो वो उसको स्पेशलिटी बरकरार रखना पड़ता है ना, क्योंकि उस जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों में एक चीज़ ऐसी होती है जो स्पेशल होती है। जैसे हमारे पास, हमको रिश्ते, सारे रिश्ते लगे हुए हैं, औलाद है, माँ है, बाप है, ये है, वो है, लेकिन कोई ना कोई तो एक रिश्ता ऐसा होता है कि जो हटकर होता,
हटकर
है,
होता है।
तो ये जो लफ्ज हटकर आता है ना, अलग,
जो आम नहीं है,
हाँ, वो जो आम नहीं है, ठीक है, वो भी अपनी जगह है, इससे मतलब ये नहीं होता है, लेकिन एक जो है वो खास।
सही बात।
जैसे हमें समझिए कि मुझे पांच बच्चे हैं, तो उसमें से सारे बच्चे मेरे हैं, सारे बच्चों से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन एक बच्चा तो कोई ऐसा होता है कि जो स्पेशल होता है, जिससे मेरा ज्यादा लगाव है। तो अदब जो है वो स्पेशल है, वो सबसे, ऐसा नहीं है कि आपने उसको बिल्कुल नौटंकी में डाल दिया, नहीं, अदब की इनफरादियत है। क्यों? कि अदब जो है वो गुजारी नहीं है, वो अपना मकसद के साथ काम कर रहा है। तो ये एक अदब का दूसरा तस्वूर है कि अदब मुनफरिद है, अदब इनफरादियत रखता है। फिर एक चीज ये है कि भी अदब और सियासत, उसका एक तस्वूर ये भी है कि अदब और सियासत का, दोनों का तालमेल ऐसा होना चाहिए कि अदब सियासत पर नजर रखता हो। ये नहीं कि अदब सियासत की हाँ में हाँ मिलाता हो। अदब अगर सियासत की हाँ में हाँ मिलाने लग जाए तो समाज के सरोकार से निकल जाएगा बाहर।
बहुत अच्छा।
उसमें तो समाज पर नजर रखना, कि समाज, सियासत पर नजर रखना चाहिए कि सियासत समाज की इस्लाह कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर समाज का इस्तेसाल यानी शोषण कर रही है, क्या करना चाहिए, यह अदब का काम है। तो अदब और सियासत का इस तरह से आपस में तालमेल यूं बैठना चाहिए, तालमेल गलत वाला नहीं बैठना चाहिए, बनना चाहिए तालमेल सही वाला होना चाहिए, जो समाज के फायदे के लिए हो, ना कि समाज के लिए विघातक हो, उसके लिए नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। तो यह अदब का एक तस्वीर के अदब और सियासत। तरक्की पसंद ने यही किया, तरक्की पसंद अदब ने, तरक्की पसंद अदब जब तहरीर किया गया, तख्लीक किया गया, तो तरक्की पसंद तनकीद ने भी ये देखा कि ये अदब और सियासत में से ये इनका जो जो पैरेलल चल रहे हैं, तो ये कैसा इसको मेंटेन कर रहा है, कैसे उसको बरकरार रखकर आगे बढ़ रहा है, कि वो जिसको मराठी में कहते हैं कि वचक रखना उस पे,
बराबर,
तो सर्विलेंस जिसको कहते हैं, तो वो सर्विलेंस है उसका अदब,
अदब का, सही,
कि वो क्या चल रहा है। जैसे अब हम यहाँ से बहुत सारे जो बाद में जो नॉवेल्स लिखे जा रहे हैं, जैसे अब लेटेस्ट जो फिल्म आई है थ्री इडियट्स, वो क्या है, एजुकेशनल पॉलिटिक्स का है। थ्री इडियट्स आपने देखा होगा, तो ये एजुकेशनल पॉलिटिक्स है, इस पर वो चेतन भगत का नॉवेल आया, उस पर वो फिल्म बनी, तो इसलिए कि वो अदब है ना, लिटरेचर है वो, दैट इज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर,
बराबर।
तो वो उसको उन्होंने अपने इसमें अदब ने बयान किया वो कि एजुकेशनल पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, कि उसको थोपा जा रहा है, वो दिल से जो करना चाहता है वो नहीं करने दिया जा रहा है, वो जो करवाना चाहता है वो करवा रहे हैं,
जो गलत है,
जो गलत है। तो अदब और सियासत का इस तरह से, कि कहां गलत हो रहा है वो बताता है अदब, कि यहां आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, तो वो अपनी तहरीरों में शायर शायरी के जरिए बताएगा, तंजो मिजा निगार उस पर तंज करेगा, उससे बताएगा, अफसाना निगार अफसाने लिखेगा उसके खिलाफ कि सियासत ऐसी चल रही है। तो सियासत अपने कदम सही कर लेने चाहिए, यह अदब और सियासत का आपस में ताल्लुक है। फिर एक पैमाना यह भी था कि अमली सियासी जद्दोजहद में अमली शिरकत अदब करता है या नहीं करता है सियासी जद्दोजहद में। तो चूंकि तरक्की पसंदी का जमाना, तो 11 साल तक तो आज़ादी नहीं मिली थी, तरक्की पसंद तहरीक के अंजुमन के कायम होने के 11 साल तक आज़ादी नहीं मिली थी, तो जाहिर सी बात है कि वो तो सियासी गर्मा गर्मी का माहौल था। सेकंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अजीम भी हो गई और शुरू हुई थी, और उसके फौरन बाद जब जैसी वो ख़त्म हुई तो 2 साल के बाद हमको आज़ादी मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो तरक्की पसंद का दौर था, तो तरक्की पसंद तनकीद का भी और तरक्की पसंद अदब का भी, दोनों का ऐसा दौर था वो कि एकदम जो बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव दौर था, यानी उनको चैन फुर्सत बिल्कुल नहीं थी, बस वो उसमें इन्वॉल्व ही रहे। तो जाहिर सी बात है कि वो उनकी जो कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो हमने देखा कि तरक्की पसंदों की जो कॉन्फ्रेंसेस हुई, जैसे 5वीं कॉन्फ्रेंस जो भीमड़ी में हुई थी, बॉम्बे में एक इलाका है भीमड़ी, तो वहां जो हुई थी, तो वहां वहां तक आजादी के बाद हुई थी वो, तो वहां तक वो उनका वो चलता आया। तो ये सब एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर उनका हिस्सा था। जैसे अच्छा एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर उनके हिस्से का एक और सबूत मैं आप बता दूं कि मखदूम मोहिउद्दीन का नाम हमने पढ़ा है कि भी मखदूम मोहिउद्दीन जो है वो तरक्की पसंद शायर थे। तो मखदूम मोहिउद्दीन को एक जमाने में अंडरग्राउंड होना पड़ा, क्योंकि पुलिस का वारंट निकला हुआ था उनके खिलाफ। क्यों? एक अदीब सिर्फ लिख रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, फिर उसको पुलिस क्यों पकड़ रही है? इसलिए कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में था। अमली तौर पे जिसको हम अमली सियासत कहते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स, उसमें अदीब जो तरक्की पसंद अदीब थे वो उसमें शामिल थे। फैज अहमद फैज कई साल जेल में रहना पड़ा। तो इनको ये सब इसलिए कि ये अमली सियासत में, तो तनकीद निगार ने यह भी देखा कि अमली तौर पर अमली सियासत में इस अदब का क्या हिस्सा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर एक तख्लीककार अमली सियासत में एक पोस्ट चाहता है कि वो उसका प्रेसिडेंट बन जाए कांग्रेस का, या उस वक्त जो भी पार्टी थी उसका कुछ बड़ा ओहदेदार बन जाए, तो फिर वो उसको उसको उसकी तनकीद के इसमें निगेटिव में आता है। और अगर वो किसी अच्छे मकसद के लिए किसी पार्टी में शामिल होकर अच्छा काम करता है, वो उसके पॉजिटिव में शामिल होता है। तो ये अदब का और अमली इसका उसके तस्वुरात में ये है कि इस तरह से वो चेक करते थे कि अदब कैसा।
सर जैसे कि आपने कहा कि अदब किसी भी ज़माने का हो, उसका तनकीद होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि पुराने शायरी या अफसाने, उनका तनकीद करना और तरक्की पसंद अदबों का तनकीद करना, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है और उसके मायने भी बहुत अलग है।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा।
तो ये तरक्की पसंद अदब का तनकीद करना, इसके और क्या मायने हो सकते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, और ये कितना डिफिकल्ट काम है ऐसा आपको लगता है?
जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि तरक्की पसंद जो पहली जो पुरानी तख्लीकात थी, पुराना अदब था, और उसके बाद जो तरक्की पसंद अदब था, ये दोनों की अगर तनकीद की जाए तो उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, जो पहला अदब था तरक्की पसंद अदब में, और उसमें फ़र्क ये था कि वो इतना ठोस ठोस कर भरा हुआ नहीं था। एक जो लगे बंधे मौजूआत टॉपिक्स बस वही चल रहे थे, और कब से? सदियों से।
सदियों से,
आजकल की बात नहीं थी, महीना दो महीना साल दो साल की भी बात नहीं थी, सदियों से जो मौजूआत चले आ रहे थे वही मौजूआत अदब में शामिल थे। लेकिन अचानक ये हवाएं चली तो सारी चीजें बदल गई। तो अदब भी जब बदला तो उस अदब में जो सदियों से चला आ रहा था कोई नई चीज नहीं थी। एक दूसरे, अगर हम इसका मवाजना करें, कंपैरिजन करें कि तरक्की पसंद अदब और पुराना अदब, क्लासिकी अदब हम उसको बोलेंगे, पुराना अदब यानी क्लासिकी अदब, तो क्लासिकी अदब और तरक्की पसंद अदब दोनों के अंदर यह फर्क रहा कि इसमें मकसदियत थी, उसमें मकसदियत नहीं थी। उसमें अगर मकसदियत होगी भी तो वो बहुत महदूद पैमाने पर थी
सही बात
कि साहब क्या है, हाँ अखलाकी तरबियत करना, तो उसमें भी उसका जो मीडियम था बहुत स्ट्रांग नहीं था। तरक्की पसंद में ये सारी चीजें थी, उनके पास मकसदियत थी। उस वक्त अदब, जो क्लासिकी अदब हम कहते हैं, वो ज्यादा इंसान के, जिसको हम मेटाफिजिकल वो कहते हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज्यादा, समाजी जिंदगी से बहुत ज्यादा करीब नहीं था। आदमी क्या ख्वाब देख सकता है, ये वो बात थी, क्या हो रहा है उसके साथ ये नहीं था।
नहीं
तरक्की पसंद अदब में क्या है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये था। तस्वुरात नहीं थे कि मैं इमेजिन कर रहा हूं कि उड़न खटोला है ना, कि साहब एक जिन आया फिर उसने बोला कि आका क्या हुक्म है, या फिर एक परी आ गई और उसके साथ उसको ले उड़ी, जो शहजादा इतना खूबसूरत था ना। जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में शहजादे होते हैं ना, परी होती है। वो तो बेचारी वो सूखी सड़ी सी एक उस वक्त वो बीवी होती थी, फिर घर में बहुत सारे बच्चे या फिर रिश्तेदार
सही
जिनको
बात है,
खा जिनको रोटी की जरूरत होती थी, ये रियल मसाइल थे।
ये रियल।
लेकिन उससे पहले का जो क्लासिक अदब था तो वो ये कहता था। फिर वो उनकी हसीनाएं होती थी कि जिनके बाल लंबे, आंखें ऐसी बड़ी बड़ी, कहाँ होते हैं ये सब। तो कहने का मतलब ये है कि क्लासिकी अदब के जो मौजूदात थे और तरक्की पसंद अदब के जो मौजूदात थे, तो जब हम उनकी तनकीद भी करने बैठेंगे तो उसमें बहुत कुछ हाथ नहीं आएगा। यानी ये होगा कि अगर हम एक कुएं में डोल डालें पानी निकालने के लिए और वो सूखा कुआं है, तो आएगा क्या हाथ। तो इनके लिहाज से, तरक्की पसंद अदब के लिहाज से, वो चीजें उसमें नहीं थी। तो डोल जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी आता था तनकीद के बकेट में, और इधर जो है वो तनकीद के बकेट में चूंकि ऑलरेडी वो उनका तय किया हुआ था कि क्या होना चाहिए, तो इन्होंने डाले तो कम से कम आधी से ज्यादा बकेट भर के आती थी।
सही बात है।
तो ये तनकीद, मतलब तरक्की पसंद तनकीद और तरक्की पसंद अदब और क्लासिकी अदब, तरक्की पसंद अदब की तनकीद और क्लासिकी अदब की तनकीद, दोनों के दरमियान ये फर्क है।
सर आपने ये जो फर्क है वो बहुत अच्छी तरह से बताया, लेकिन जब कोई व्यक्ति पढ़ता है अदब का जो पढ़ता है, तो उसको क्लासिकल या क्लासिकी जैसे के अदब है वो उसका मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर वास्तविकता में क्या है ये देखना है तो उसे तरक्की पसंद अदब का ही सहारा लेना पड़ेगा, ऐसा आपको आपका कहना है। तो इसमें जो बैलेंस है,
जी
समझो आप मुझे हर बार दुख दर्द के बारे में बताएंगे तो वो भी मैं उससे उबल जाऊंगा कि ये अभी छोड़ो, जरा कुछ ऐसी बातें बताओ जिससे मेरा दिल बहल जाए। तो दोनों की जरूरत है वैसे जिंदगी में, तो ये जो बैलेंस है दोनों में
जी,
वो किस तरह से हम रख सकते हैं?
देखिए बैलेंस जिंदगी में तरक्की पसंदी और इसकी अगर हम बात करें तो देखिए क्लासिक होना भी जरूरी है,
जरूरी।
हम ये नहीं कह सकते कि, क्योंकि देखिए हर इंसान चाहता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लम्हों के कुछ ऐसे हों कि जिसमें वो ये आज की जो कठिनाई आएंगी
भूल जाए। सही बात
है ना, कि जैसे गालिब का शेर है कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। ये बेस्ट, मतलब ये बेहतरीन मिसाल है ये शेर, के जो दोनों के दरमियान तरक्की पसंद और क्लासिक अदब के दरमियान तवाजुन, बैलेंस कायम रखता है, बताता है कि इंसान की जरूरत है वो भी।
सही बात।
तो फर्क सिर्फ इतना है कि एतदाल जिसको कहते हैं हम, वो उसको कायम नहीं रखा गया, सब एक चली हुई राह थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक नज्म आपको पता है कि वो द रोड नॉट टेकन, कि उसके सामने तीन रास्ते रहते हैं और वो तीन में से किसी एक रास्ते को चुनना चाहता है। तो एक रास्ता बहुत घिसा हुआ, सारे लोग उसी पर चल रहे थे, एक रास्ता बिल्कुल, और एक रास्ता जो था जिसपे बहुत कम लोग चले। तो वो कहता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि वो द रोड दैट वॉज दैट आई टुक दैट वॉज नॉट टेकन बाय मीनी, आई टुक दैट रोड। तो उस रास्ते पे चलना जिसपे नहीं चले लोग या कम लोग चले, वो कमाल की बात है। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो
सही बात,
कोई
कुछ
बात
बात
नहीं।
सही बात।
तो ये चीज थी कि अदब का तवाजुन बरकरार रहना चाहिए, कि हम क्लासिक के अदब से भी दूर ना रहें।
सही बात।
आज भी मोमिन का वो शेर कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, आज भी अपनी खूबसूरती और अपने यूनिक शेर है, आज भी क्लासिक है, मौजू भी क्लासिक है, लेकिन वो चीज है। गालिब आज भी गालिब, हालांकि गालिब तरक्की पसंद नहीं थे,
नहीं थे
लेकिन फिर
फिर।
भी क्लासिक के अंदर गालिब को तरक्की पसंद भी उस्ताद मानते हैं, आज भी कोई भी पढ़े वो गालिब गालिब है। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्लासिकी अदब जो था वो बिल्कुल बेकार था। क्लासिकी अदब में इकबाल ने कहा, अल्लामा इकबाल ने, उसके बाद उनसे पहले मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा, उन्होंने जो नज़्म लिखी मद्दो जज़र इस्लाम, तो वो पढ़कर तो बिल्कुल एक नया नया था वो उनका ना, वो सब प्रैक्टिकल लाइफ पे थी उनके, लेकिन वो तरक्की पसंद के इसमें नहीं थी,
नहीं थे
एक नए मोड़ उन्होंने ज़रूर दिया
दिया,
और रोज़मर्रा के
सही
मसाइल बयान किए उन्होंने कि
सही
हालत क्या हो गई तुम्हारी।
हालत क्या होगी तुम्हारी, सही बात है।
तो ये, और जो तरक्की पसंद अदब था उसमें इश्तराकिया जिसको कहते हैं हम कम्युनिज्म, तो तरक्की पर ये हमको हर जब हम तरक्की पसंदी पढ़ रहे हैं तो ये पर्चा पढ़ते हुए हमको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि तरक्की पसंदी इश्तराकियत ये एक ही बात है, क्योंकि तरक्की पसंद तहरीक जो है उसकी जड़ें जो हैं वो इश्तराकियत यानी कम्युनिज्म में छुपी हुई थी,
सही
उसी
बात
की बुनियाद पर खड़ा हुआ था पूरा,
सही बात
वो उसी की तबलीग कर रहा था, उसी नज़रिए का
सही बात।
मुबल्लिग था।
तो ये व्यक्ति ने तय करना है कि दोनों में से, दोनों पढ़े
जी
लेकिन ज्यादा सीख किससे ले,
हाँ
दोनों दोनों ही जरूरी है
जी जी जी
लेकिन ज्यादा जो सीख है जिंदगी की वो किससे ले। अभी तरक्की पसंद तनकीद में ऐसे कौन कौन से नाम है कि जिन्होंने ये तनकीद में बहुत बड़ा अपना रोल अदा किया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, और उन्होंने जो तनकीद किया तरक्की पसंद अदाब का
जी
वो किस आधार पे किया, इसके बारे में जरा हमको बताइए।
जी जी देखिए, तरक्की पसंद जो तनकीद की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो तरक्की पसंद तनकीद में अख्तर हुसैन रायपुरी के नाम आता है, सज्जाद ज़हीर का नाम आता है, नियाज फतेहपुरी का नाम आता है, एहतिशाम हुसैन का नाम आता है, मसूद हुसैन का नाम आता है, हसन अस्करी का नाम आता है, ये सब तरक्की डॉक्टर डॉक्टर अब्दुल अलीम का नाम आता है, अख्तर अंसारी का नाम आता है, ये सब सरदार जाफरी हैं, मुमताज़ हुसैन हैं, ये सब तनकीद निगार थे ऐसे जिन्होंने तरक्की पसंदी का जामा ओढ़ रखा था, जो चीज़ जब कि अदब को वो इसी तराजू में तोलते थे कि इन्होंने इन उसूलों पर तय करते थे वो कि अदब जो तख्लीक किया गया है तो ये अदब इन उसूलों पर पूरा उतरता है या नहीं,
या नहीं, सही
ये
बात
तरक्की दिए थे। और अदब को जिन उसूलों के उन्होंने देखा कि देखिए पहले उन्होंने ये कहा कि अदब को जानिबदार होना चाहिए, पार्शल उन्होंने कहा कि अदब को तरक्की, देखिए इससे पहले जो बात होती थी वो होती थी कि इम्पार्शल होना चाहिए, गैर जानिबदार,
अपनी कुछ
कोई
जिम्मेदारी नहीं
जिम्मेदारी
होती है।
नहीं। तरक्की पसंद तनकीद ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं चलता, अदब को किसी ना किसी तरफ तो जाने झुकना ही पड़ेगा ना भाई, अगर आपको कहा जाए कि भाई ये दो लोग हैं इधर या इधर, तो आप बोलेंगे साहब नहीं इधर भी नहीं उधर, ऐसा तो होता ही नहीं,
ऐसे नहीं होता, सही बात
दुनिया में दो ताकतें हैं अच्छाई और बुराई की, आपसे कहा जाए कि साहब किधर, तो कहा कि नहीं मैं ना इधर ना उधर, ऐसा तो हो ही नहीं
है,
सकता,
ऐसे सही
आपको
बात
या तो अच्छे के साथ होना पड़ेगा या फिर बुरे बुरे के साथ खड़े हो जाइए, दो में से किसी एक के साथ खड़े हो जाइए, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो उनका यह मानना था, हम उसको हम अपने जाती तौर पर नहीं देखते हुए हम ये देखेंगे फन के एतबार से कि अदब को उनका एक उसूल था, उनका एक नजरिया था कि अदब को जानिबदार होना चाहिए, यानी जानिबदार लफ्ज बना है, जानिब यानी तरफ साइड, तो
साइड।
किसी एक साइड पे होना पड़ेगा उसको, किसी एक पार्टी की तरफ होना पड़ेगा क्योंकि ये उसका उसूल है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि अदब के लिए अवाम, तो अदब के लिए पहले क्या होता था कि अवाम के लिए अदब है ना, यानी समाज के लिए लिटरेचर, लेकिन फिर ये कि अदब के लिए अवाम कहां से लाएंगे आप, तो आपको तैयार करने पड़ेंगे, आपको पढ़ने वाले तैयार करने पड़ेंगे, जैसे बीच में बहुत जैसे बहुत सारे नॉवेल्स या ऑब्सीन मटेरियल जो है, जैसे आज फेसबुक है, फेसबुक के लिए फेसबुक वाले को अपने तैयार नहीं करने पड़ते हैं उसको क्लाइंट्स,
सही बात,
वो खुद ब खुद उसको मतलब मिल जा रहे हैं, बल्कि लोग खुद होकर उसके ऊपर जाके फेसबुक पे अकाउंट खोल रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन अदब को अपना अवाम खुद तैयार करना पड़ेगा उसको,
ये उसकी जिम्मेदारी
उसकी
है,
जिम्मेदारी थी,
सही बात
और वो तभी हो सकता था कि जब वो ऐसा अदब तख्लीक करे कि जो अवाम जिसको हम बोलते हैं लोक अभिमुक्त है ना, अवाम से
है।
जुड़ा
यस
हुआ, लोगों से जुड़ा हुआ,
जी, लोगों से
वो
जुड़ा।
अदब होना चाहिए, ये अदब की एक अच्छी
तो तरक्की पसंद अदाब में जो जिन्होंने लिखा उनकी जिम्मेदारी तय की गई है,
जी
अगर वो जिम्मेदारी निभाते हैं तभी उनका जो साहित्य है वो तरक्की पसंद होगा या नहीं होगा। अगर ऐसे कुछ नाम आप बताएंगे कि जिन्होंने तरक्की पसंद में लिखा लेकिन उनका जो व्यू पॉइंट था, उनका जो नज़रिया था, वो लोगों को इतना भाया नहीं और वो समय के चलते वो उनका साहित्य लोगों ने सराहनीय, ऐसा कुछ हुआ है क्या?
देखिए, अदब में तो जिन लोगों ने तरक्की पसंद अदब तख्लीक किया, तो अदब तख्लीक करने वालों का तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अदब तख्लीक किया, लेकिन वो लोग टिक नहीं पाए। इसलिए नहीं टिक पाए कि वो बहुत ज़्यादा जो क्विक ग्लैमर होता है, तो वो ग्लैमर कितना परमानेंट हो सकता है ये इस पर डिपेंड करता है, और उसका परमानेंट होने के लिए उसके अंदर कितना दम है ये उस पर डिपेंड करता है। अब ऐसी चीज के जिसको सिर्फ टाइमली यानी टेम्पररी आर्जी तौर पर जिसकी चमक देखकर आप मुतासिर हो गए हों, तो ऐसे इससे तो एक फिल्म चल जाएगी, दूसरी नहीं चलेगी।
दूसरे नहीं
चलेगी तो वो फिल्म के जिसमें जो एक्टर्स हैं या जिसका भी कमाल है, तो वो कंसिस्टेंसी हो, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। जैसे आज भी आप फिल्मों की अगर हम मिसाल लें, तो दिलीप कुमार का वो क्वालिटी, हर फिल्म चाहे फिल्म फ्लॉप हो जाए, लेकिन एक उसका। और कुछ फिल्में ऐसी रहीं कि जो पहली फिल्म में आए हो और उसके बाद गायब हो गए, कोई पहचानता नहीं। तो
उस
ये इस तरह के लिखने वाले जो सिर्फ तरक्की पसंद नारों से मुतासर होकर लिखने वाले थे कि नारे लगे कि तू मेरे साथ ही चल, तो कहाँ तक चले, क्यों चले, ये सब आपको सोचना पड़ेगा।
तो लंबे समय तक वो टिकना
हाँ,
चाहिए,
टिकना चाहिए
और
ना।
लंबे यानी लंबे समय में क्या हो सकता है उसका प्रेडिक्शन भी उनको आना
आना
चाहिए,
चाहिए उनको,
उसका अंदाजा उनको आना चाहिए।
सही।
तो ये बहुत सर आपने अच्छा बताया। अभी जैसे कि आपने अदब और सियासत के बारे में हमको बताया, क्या कभी ऐसा होता है कि सियासत के उसूलों पे चलते या सियासत के जो नॉर्म्स है, उनके जो रूल्स है, उस पे वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं तंकीद करने वालों पर,
जी
और इसलिए कुछ ऐसा हो जाता है कि जो अदब अच्छा है, तरक्की पसंद है, लेकिन सियासत को वो मंजूर नहीं करके वो उसको कहीं निकाल दिया या बॉयकॉट कर दिया, ऐसा कुछ होता है क्या? कुछ हुआ है क्या?
हाँ, होता है सर, क्योंकि अदब में जब जब भी सियासत का, जैसे ये कहा गया है कि तरक्की पसंद तनकीद ने ये उसूल तय किया था कि अदब का और सियासत का ताल्लुक है, ताल्लुक जो है कि वो उसका उस पर नज़र रखता है। लेकिन जब जब ऐसा हुआ कि सियासत अदब पर हावी हो गई, तो तब तब जो आपने मिसाल दी कि उसको वो अदब ख़त्म हो गया, या उसको निकाल दिया गया बाहर, या उसको बैन कर दिया गया, या उस पर पाबंदी लाई गई, ये सारी चीज़ें, तो ये होता आया है, पहले भी होता आया अंग्रेज़ों के दौर में, आज भी हो रहा है, सारी जगह हो रहा है। देखिए, जहाँ जहाँ आपकी कोई बात, ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं कि जो आला ज़र्फ़ी से अपनी गलती मान लेते हैं, उनको बता दिया जाए कि साहब एक ये बात तो ये ठीक नहीं है। जैसे हमने देखा कि इंदिरा गांधी के दौर में ये था कि वो किसी की बात सुनती नहीं थी, एक ये पॉलिटिकल बात हो गई। लेकिन अगर उनके ऊपर उसको अदब की उस बात को, मैंने ये सुना है कि कोई फिल्म मेरे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन उन पर वो उस तरह की कोई फिल्म बनाई गई तो वो उसको बैन, बिल्कुल उन्होंने सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो ये होता है, अदब में भी होता है, कोई नावल आप लिखे हैं, कोई अफसाना लिखे हैं, शायरी ऐसी करें कि जिसमें वो ख्यालात, जैसे एक मैंने अभी बहुत ही करीब में मैंने पढ़ा है कि शाद आरिफी जो थे, उनकी एक नज्म थी, वो नज्म वो उसको जब्त कर लिया गया।
जब कर लिया।
तो क्यों जब्त किया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आम लोग उसको पढ़ लें, तो हुकूमत की तरफ से उनके दिल में और ज़्यादा बगावत या एहतजाज के जज्बात बढ़ सकते हैं, कह रहे
सही।
साहब इन्होंने हमारे दिल की बात की, फिर ये आम लोगों में भी फैल सकती है बात। तो कोई भी हुकूमत यानी सियासत ये नहीं चाहती कि उसके खिलाफ एहतजाज आवाम की जानिब से हो,
तो जिम्मेदारी दोनों की बनती है,
जिम्मेदारी दोनों की बनती है।
सियासत की भी बनती है और आदाब जो जिसने लिखा उसकी भी
जी जी
बनती है। सर, अभी जैसे कि आपने कहा कि ये बहुत नाजुक मामला है
जी
कि तनकीद करना, फिर भी मैं ये चाहूँगा कि अगर किसी साहित्य को एक तरक्की पसंद कहते हैं या
जी
उसे हम मान लेना चाहते हैं, तो उसकी समाज के प्रति क्या क्या अपेक्षा होती है कि समाज में अगर ये किया तो मेरे इस आदाब का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। जो जिस समस्या का जिक्र उन्होंने किया है, तो जिक्र करते समय भी अगर वो चाहते कि समाज का रवैया इस तरह से होना चाहिए, तब आगे चल के ये मामला सुलझ जाएगा, तो ऐसी कुछ अपेक्षाएं होती है समाज की तरफ से भी।
जी
तो ऐसा कुछ आपके जहन में आता है कि ये इस अदब में समाज के प्रति ये अपेक्षाएं रखी थी और हालांकि ये पूरी हो गई तो वो समस्या का भी हल हो गया।
देखिए, एक उसमें इस तरह की मिसाल में मुझे सबसे वाइब्रेंट जो एग्जाम्पल है वो तमस नाम का एक नॉवेल है,
सही
भीष्म साहनी का,
बात,
बलराज साहनी के बड़े भाई थे भीष्म साहनी। तो उसमें उन्होंने आज़ादी के बाद जो फिरकावाराना फसादात हुए उसकी बारीकियां, उसके नुकसान, उसके सारी चीज़ें, और फिर क्या होना चाहिए, कैसा, उन्होंने माजी भी बताया कि क्या थे, आज बताया, और कल का भी उन्होंने एक हवाला दे दिया। तो ये अदब था, अदब ये किरदार अदा करता है कि आज के जो मसाइल हैं, उस वक्त के सादात हसन मिंटू ने जो लिखा, वो आज़ादी के फौरन बाद जो कुछ भी हुआ, जिस पे जो बीती, मिंटू ने लिखा और खूब लिखा, उन्होंने जो अफसाने लिखे उसमें उसकी पूरी तस्वीर थी कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब आज वो हालात नहीं है तो मौजूआत बदल गए, मसाइल बदल गए, लेकिन अदब का जिम्मेदारी अदब की बदलती नहीं है।
बदलती नहीं, सही बात,
वो मौजू अदब के लिए ये हिदायत है कि वो मौजूआत भले ही बदल ले, जिम्मेदारी ना बदले,
जिम्मेदारी
जो उसकी अपनी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे।
और दुर्भाग्य से अगर वही हालात पैदा हुए आगे चल के,
जी जी
तो उसके लिए किस तरह से अपने आप को तैयार करना, यह भी अदब बताता है उसमें
हाँ, ये भी अदब
कि
बताता है। पहले तो यही ख्वाहिश है कि ऐसे हालात
ना पैदा हो
ना पैदा
फिर
हों,
भी।
क्योंकि दुनिया एक मरतबा तबाही झेल चुकी,
सही बात
अब
है,
इसके बाद हम में उतनी ताकत नहीं रही है
ताकत नहीं
किसी
है,
में,
सही
पूरी
बात,
दुनिया में, कि अब उससे ज्यादा तबाही, इंसानियत इससे ज्यादा तबाही झेल नहीं सकती।
नहीं सकते, सही बात है,
ये अलग बात है कि दुनिया में जो कैपिटलिस्ट, जो सरमायादार हैं, वो कोशिश यही कर रहे हैं कि ये ऐसा ही रहेगा तो उनका फायदा रहेगा। वो बंदूकें, हथियार किसको बेचेंगे? कमाल की बात तो यह है कि मैं पिछले 150 साल की हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, पढ़ चुका हूं, पढ़ाता आया हूं बच्चों को, तो उसमें मैंने ये देखा कि जितने भी समृद्ध देश हैं उन्होंने आपस में कभी लड़ाई नहीं, सिर्फ लड़वाया है, क्योंकि उसी लड़वाने के
लाभ उनको
समृद्धि वहीं से आई। तो ये जो लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम तरक्की पसंदी की बात कर रहे हैं, हम भी तरक्की पसंद, तरक्की पजीर मुल्क हैं,
सही बात है,
तो हम तरक्की याफ्ता डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री कब बनेंगे?
कब बनेंगे,
हम तब बनेंगे जब हम हिंदू मुसलमान ये भूल जाएंगे,
सही बात है,
देश पहले आएगा,
क्या सही बात
है ना,
है,
मेरा करप्शन नहीं रहेगा,
नहीं बहुत
देश
बढ़िया,
पहले आएगा, मेरा घर भरता है या वो पहले मेरा घर बने, सोने का बने, दूसरे का मिट्टी का भी ना बने, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक देश डेवलप्ड कंट्री नहीं कहला सकता।
बहुत
इसके लिए
बढ़िया,
ये अदब को भी इसके लिए आगे आना होगा।
बहुत बढ़िया। तो सर, जैसे तरक्की पसंद तनकीद के बारे में बात कर रहे थे और आपने बहुत अच्छी बात यहाँ कही
जी
कि ये तरक्की पसंद अप्रोच हर व्यक्ति में, हर देश में इस तरह का होना चाहिए कि मेरे साथ दूसरों की भी प्रगति हो, दूसरा भी बढ़े। तो यही विचार से मैं इधर रुकना चाहूँगा। आपने तरक्की पसंद तनकीद के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे ये अच्छा लगा कि हर एक का उद्देश्य क्या है,
जी
चाहे वो पुराना लिटरेचर हो या तरक्की पसंद हो, इंसानियत रखना और इंसान के प्रति, उसके प्रगति के प्रति सदा जागरूक रहना, अलर्ट जिसे हम कहते हैं।
एक बात और मैं थोड़ी सी मुख्तसर कहना चाहूंगा कि इंसान, ये मादियत जिसे कहते हैं मटेरियलिज्म, तो इसमें ये होता है कि आज हम लोगों ने एक जो सबसे खराब वैल्यू जो बात सीखी है वो ये सीखी हमने कि हमारी दुनिया जो है ना वो हमारे पैरों के आसपास ही, हमने एक दायरा बना
सिकुड़
लिया
गई,
है, सर्कल बना लिया है हमारे पैरों
सिकुड़
के
गई
आसपास, बस वही हमारी दुनिया, उससे बाहर हम देखने को तैयार नहीं।
तैयार नहीं,
ये जो मसाइल प्रॉब्लम हो रहे हैं ना, पहले ऐसा नहीं था,
ऐसा नहीं
पहले
था।
ये ऐसा होता था कि मेरे पड़ोस का बच्चा चाहे कोई भी हो, अगर हसनैन आकिब के पड़ोस में अगर दिलीप रहता है तो वो दिलीप का लड़का अमित कहाँ जा रहा उसको पता रहता था,
सही बात है,
और वो अमित भी डरता था कि हसनैन आकिब इधर से गुजरेंगे तो बहुत मारेंगे करके पूरा समाज जो है वो संगठित भी था और सेहतमंद भी था।
सही बात है,
आज विघटित हो गया है
विघटित हो गया,
और हमने अपने अलावा सोचने बंद कर दिया।
सोचते
हम बाजू में
बंद,
बोले ना, उसका है बच्चा है, उसका बच्चा है, ये उसका बच्चा नहीं,
ये
सारा समाज मेरा है,
समझ,
वसुंधरा
सही बात है,
कुटुंबकुम।
सही बात है,
तो
सही बात,
वसुंधरा कुटुंबकुम यूं ही नहीं बनता है, आपका मोहल्ला आपका कुटुंब नहीं बन सक रहा, आपका कुटुंब आपका कुटुंब नहीं बन
सही
सक
बात
रहा,
है।
तो किस पर काम की बात है।
जैसे कि वो आजकल ऐड आ रही है टीवी पे सीमेंट की, तो
जी,
टीचर बोलती है दीवार के बारे में बोल, तो वो बोलता है कि ये
हाँ
दीवार मेरे और वो मुसलमान है इसके हमारे बीच में पैदा की गई है।
जी,
तो ये बहुत अच्छा कहा आपने। तो मैं चाहूँगा सर, आपने जो तनकीद के बारे में, तरक्की पसंद तनकीद के बारे में जानकारी दी, उससे बहुत बड़ा लाभ होगा हमारे बच्चों को, और अंत में चल के उनको ये बात वो अपने जहन में रखे कि सबकी प्रगति में, सबकी डेवलपमेंट में ही और सबकी सुख शांति में ही अपनी सुख शांति बसी है। हम समाज के अगर हट के चले तो आसान है कि हम बहुत भटक जाएंगे और समाज में रहने के शायद काबिल भी ना रहे।
जी
तो मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूँ
जी
और मैं ये चाहूँगा कि आगे चल के भी आपसे ऐसी बातें होती रहे
जी
ताकि जिसका लाभ हमारे बच्चों को भी मिले। धन्यवाद।